जानवी और अमर दोनों एक साथ लंच के टाइम अपने कमरे से बाहर आए थे। जानवी गुस्से से अमर को घूर रही थी क्योंकि अमर ने उसे परेशान कर रखा था और वो उसे नीचे आने ही नहीं देना चाहता था। कल्याण सिंह और रजत सोफे पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही अमर और जानवी को देखा, उन दोनों के चेहरे खिल उठे। जानवी जल्दी से गई और उन दोनों के पांव छूते हुए बोली, सॉरी दादू, वो मैं मॉर्निंग में आ नहीं पाई। ये बोलते वक्त जानवी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। ये देखकर कल्याण सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं है बेटा, मुझे पता है इस कुत्ते के पिल्लई ने तुझे फार्म हाउस में बहुत परेशान किया है। मेरी फूल सी बच्ची से इतना काम करवाया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में बहुत थकान होगी। उसके लिए तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है। सुबह से उसने वो सब काम किया है जो तुम्हें करना चाहिए था। ये सुनकर रजत ने कहा, पर वो दिखाई नहीं, मुझे कहाँ चली गई। जानवी ने भी हॉल में इधर उधर नज़रें घुमाई। समर्थ ने धीरे से कहा, शायद वो गार्डन में है, दीक्षांत ने उसे गार्डन एरिया में भेजा था। अमर ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। समर्थ कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर से दीक्षांत ने अंदर आते हुए कहा, महाशय को चक्कर आ रहे हैं, मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, कुछ देर में आती ही होगी। इसे आई थिंक ग्लूकोज की ज़रूरत है, और साथ में इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, डॉक्टर दवाई देगी तो ठीक हो जाएगा। कल्याण सिंह ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अगर गलत इंसान से दिल लग जाए तो उसे एक भूल समझकर हमें अपने जहन से निकाल फेंकना चाहिए। तुम जितना उस लड़की के बारे में सोचोगे उतना खुद को और तकलीफ दोगे, तो भूल जाओ उसे। समर्थ ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको क्या लगता है कल्याण सिंह जी, क्या मैं उस भूलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ कि मैं उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग में ना लेकर आऊँ, पर आंखें बंद करते ही उसका रोता हुआ चेहरा मेरे सामने घूम रहा है। कभी उसके रोने की आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दे रही हैं, कभी लगता है और वो अभी मुझ पर तंज कसेगी, पर ये सब सिर्फ मेरा वहम है, ये सोचकर अंदर से दिल दुख रहा है। पूरे हॉल में खामोशी छा चुकी थी। हर किसी को समर्थ के उस मासूम से चेहरे पर उसके दिल का दर्द दिखाई दे रहा था, पर उनके पास शब्द नहीं बचे थे जिनसे वो समर्थ को दिलासा दे पाते। थोड़ी देर बाद हॉल में एक मेल डॉक्टर आया, जिसे देखते ही अमर ने आगे बढ़कर समर्थ को सोफे से उठाया और उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे कमरे में गया। थोड़ी देर बाद जानवी किचन में सबके लिए लंच रेडी कर रही थी, तो वहीं अमर और दीक्षांत दोनों अब समर्थ के कमरे के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। रजत और कल्याण सिंह वापस हॉल में आकर बैठ चुके थे कि तभी दरवाजे से विश्वास रावत अपनी आंखों पर चढ़ा नजर का चश्मा ठीक करते हुए धीमे कदमों से अंदर आया। उसे देखते ही रजत सोफे से उठ खड़ा हुआ। कल्याण सिंह ने भी गर्दन घुमाकर विश्वास रावत की तरफ देखा। विश्वास ने हल्के से मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते पापा जी। कल्याण सिंह ने धीरे से सिर हिला दिया, जिसके बाद विश्वास ने उनके पास आकर उनके पैर छुए और उसके बाद रजत से हाथ मिलाया। रजत ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आज कैसे यहाँ आना हुआ, या फिर जो प्रॉपर्टी कल्याण सिंह ने तुम्हारे नाम की थी वो खत्म हो गई है तो दोबारा इस घर में आए हो तुम। विश्वास रावत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, काश मैं ऐसा करता, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। कई दिनों से समर्थ अपना हाल बताता हुआ मेरे पास नहीं आया है, वरना तो जब भी उसकी लाइफ में कुछ होता है वो मेरे पास आकर ही अपना गुस्सा निकालता है, तो मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी कि सब कुछ ठीक तो नहीं है ना। उसके बाद मुझे आज ही खबर मिली अद्वैत के बारे में, जो अमर का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो आज शहर भी छोड़ रहा है। ये सारे संयोग एक साथ ही हो रहे थे, तो सोचा एक बार चलकर आप लोगों से मिल लेता हूँ। रजत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें डर है कि कहीं हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक तो नहीं हो गया है। तुम नए तमाशे का इंतजार कर रहे थे और वो तुम्हें देखने को नहीं मिला। विश्वास ने अपने हाथों को आपस में उलझाते हुए कहा, सबको यही क्यों लगता है कि मुझे आप लोगों से खुन्नस है और मैं आपको हमेशा तकलीफ में देखना चाहता हूँ। मैंने तो सामने से आकर कभी ये सब नहीं कहा। हाँ, हमारी जो भी पुरानी दुश्मनी थी वो कब की खत्म हो चुकी है। जब वो इंसान ही खत्म हो गया है जिससे तुम नफरत करते थे, तो उसके बाद इस दुश्मनी का क्या फायदा। ये सुनकर रजत खामोश हो गया, क्योंकि विश्वास की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और पिछले साल ही उसकी मौत हो गई। वो करीब 20 सालों से जेल में थी और उसे वही ब्रेन ट्यूमर हो गया था। विश्वास रावत की पत्नी ने अमर की माँ को छत से धक्का दे दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अमर और समर्थ दोनों अनाथ हो गए। उसके बाद से दोनों खानदान में कई दिनों तक दुश्मनी रही। कल्याण सिंह और रजत के पास कई सबूत थे ये साबित करने के लिए कि अमर की माँ को विश्वास रावत की पत्नी ने छत से धक्का देकर मारा है, पर विश्वास कभी इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था। वो हमेशा अपनी पत्नी की साइड लेता था, जिस वजह से इनमें दुश्मनी दिन दिन गहरी ही होती गई। लेकिन जब अमर थोड़ा समझदार हुआ तो उसने पुलिस की हेल्प से विश्वास रावत की पत्नी को आखिरकार जेल में बंद करवा ही दिया था। पुरानी बातों को याद करके विश्वास एक बार इमोशनल हो गया, पर जल्द ही उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब तो सब सही ही हो गया है और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दिनों में देश छोड़ दूंगा, तो बस आखिरी बार आप लोगों से मिलने आया था। ये सुनकर कल्याण सिंह की इतनी देर से झुकी हुई पलकें उठकर विश्वास के चेहरे पर आकर थम गई। थोड़ी देर बाद समर्थ के कमरे से भी डॉक्टर बाहर आ गया, जिसे देखते ही अमर और दीक्षांत दोनों ने जल्दी से समर्थ की कंडीशन के बारे में पूछा। तो डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल बीपी ही लो था, मैंने मेडिसिन दे दी है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, अभी सो रहे हैं, उनको थोड़ा रेस्ट करने की भी जरूरत है। दीक्षांत ने एक नज़र अमर को देखा और फिर डॉक्टर को छोड़ने बाहर तक आया। उसने एक नज़र विश्वास रावत को देखा, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, क्योंकि दीक्षांत इस पारिवारिक दुश्मनी में कभी भी शामिल नहीं था। उसने कभी भी विश्वास रावत से नफरत नहीं की थी, वो हमेशा ही समर्थ को समझाता था कि विश्वास रावत उसके परिवार का बुरा नहीं चाहता है, पर समर्थ के दिमाग में उसके आसपास के लोगों ने ये बात भर दी थी कि विश्वास रावत हमेशा से ही उनके परिवार का दुश्मन है, इसलिए वो इस घर में सबसे ज्यादा विश्वास रावत से नफरत करता था।